नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे शानदार सफलता बताया। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत अब तक 1,117 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाला गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर की आधारशिला रखेंगे। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित देश के कई हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। टेनिस में भारत की माया राजेश्वरन ने जर्मनी में ITF J200 ग्लैडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान में फोर्डो, नतांज और इस्फहान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि इन परमाणु ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला करने के बाद सभी अमरीकी विमान ईरान के वायु क्षेत्र से बाहर आ गए हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि बमों का पूरा पेलोड प्रमुख परमाणु केंद्र फोर्डो पर गिराया गया। रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि इस हमले में GBU-57A मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अब युद्ध खत्म करने पर सहमत हो जाना चाहिए, ये अब शांति का समय है। आज सुबह राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री ट्रंप ने इन हमलों को शानदार सफलता बताया है। उन्होंने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को रोकना और दुनिया में आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले सबसे बड़े देश से उत्पन्न परमाणु खतरे को रोक लगाना है।
Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's number one state sponsor of terror. The strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
ईरान के सरकारी मीडिया ने भी पुष्टि की है कि इस्फहान, नतांज और फोर्डो परमाणु ठिकानों पर दुश्मनों ने हमले किए हैं। सरकारी समाचार एजेंसी RIIB ने कहा है कि हमले से पहले संवर्धित यूरेनियम के भंडारों को हटा लिया गया था। इसराइल की समाचार एजेंसी कान ने कहा है कि ईरान पर हमले के दौरान इसराइल ने अमरीका के साथ पूरा सहयोग किया। इस बीच इसराइली बलों ने कल ईरान के महत्वपूर्ण शहर बंदर अब्बास पर नए हमले किए। इसराइली सेना ने कहा है कि के हमले मानव रहित हवाई वाहन डिपो और हथियार केंद्रों पर हुए हैं। बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा वाणिज्यिक शहर है और यहां प्रमुख बंदरगाह, नौसेना मुख्यालय और हार्मूज जल डमरू मध्य के पास महत्वपूर्ण तेल बुनियादी केंद्र हैं, जिसके माध्यम से विश्व में 20% तेल का व्यापार इसी मार्ग से होता है। इसराइल ने इस्फहान परमाणु ठिकानों पर भी हवाई हमले किए। उधर ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। एक रिपोर्ट।
ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में ईरान ने इसराइली क्षेत्र में लगभग 40 ड्रोन दागे। जवाब में इसराइली सेना ने दक्षिण पश्चिमी ईरान में दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमला किया। जिन जगहों पर हमला हुआ उनमें खुजेस्तान प्रांत में एक आपातकालीन केंद्र और एक विश्वविद्यालय भी शामिल है। इस बीच ईरान समर्थित हौजी बलों ने अमरीका को तेहरान को निशाना बनाने वाली सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ चेतावनी दी है। विद्रोहियों ने धमकी दी है कि अगर वाशिंगटन ईरान के खिलाफ इसराइल के सैन्य अभियान में शामिल होता है तो वे लाल सागर में अमरीकी जहाजों और युद्धपोतों को निशाना बनाएंगे। इस संघर्ष को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी असफल साबित हो रहे हैं। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि वे इसराइल का हमला जारी रहने तक अमरीका के साथ बातचीत में शामिल नहीं होंगे। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत करीब 1,117 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाल लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कल रात मशहद से विशेष विमान 290 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। कल शाम मशहद से ही 310 भारतीयों को लेकर एक अन्य विमान नई दिल्ली आया था। नेपाल और श्रीलंका ने ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत ईरान से उनके नागरिकों की वापसी में मदद के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देवबन ने सोशल मीडिया पोस्ट में छात्रों की वापसी में मदद के लिए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को धन्यवाद दिया। सुश्री देवबन ने कहा कि भारत का सहयोग दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी को दर्शाता है। इससे पहले श्रीलंका ने ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत ईरान से भारतीय नागरिकों के साथ उनके नागरिकों की वापसी में समय में मदद करने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एकजुटता का यह कार्य भारत और श्रीलंका के बीच मजबूत और स्थायी भागीदारी का महत्वपूर्ण उदाहरण है और श्रीलंका की जनता ने इसके लिए भारत की काफी सराहना की है। ईरान में भारतीय दूतावास ने कहा है कि नेपाल और श्रीलंका की सरकारों के अनुरोध पर दोनों देशों के नागरिकों को निकालने के प्रयास किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर आज छत्तीसगढ़ जाएंगे। इस दौरान वे राजधानी रायपुर और नारायणपुर जिले में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के रायपुर परिसर का शिलान्यास करेंगे। यह फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी करीब 40 एकड़ के क्षेत्र में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी। श्री शाह आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशकों के साथ सुरक्षा संबंधित मुद्दों को लेकर बैठक करेंगे। एक अन्य बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे। अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दूसरे दिन कल 23 जून को केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में जाकर वहां ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री इसी जिले के ईरक भट्टी क्षेत्र में स्थित सीमा सुरक्षा बल के कैंप का दौरा कर वहां जवानों के साथ बातचीत भी करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि कभी बहाल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पाकिस्तान में जा रहे अतिरिक्त पानी को राजस्थान ले जाने के लिए नहर का निर्माण करेगी। एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में गृह मंत्री ने कहा कि सरकार की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति बरकरार है। श्री शाह ने कहा कि सरकार कश्मीर, नक्सल क्षेत्र और पूर्वोत्तर में आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करने पर काम कर रही है। त्रिपुरा में राज्य सरकार ने पिछले वाम मोर्चे की सरकार के दौरान राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के निकट परिजन को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह संवेदनशील कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के अनुरूप है। इसी के तहत त्रिपुरा में वाम मोर्चा शासनकाल के दौरान राजनीतिक हिंसा के दुर्भाग्यपूर्ण शिकार बने व्यक्तियों के परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार में नौकरी दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ ने बताया कि अब तक सरकार को 39 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की जांच संबंधित जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों द्वारा की जाएगी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार की एक समिति पात्र परिजनों को सरकारी नौकरी देने की सिफारिश करेगी। फिलहाल 18 आवेदकों को त्रिपुरा सरकार के सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में नियुक्ति दी गई है, जबकि 5 और आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला।
ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स ने इंग्लैंड और वेल्स में सहायता प्राप्त मृत्यु को कानूनी बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है। इससे समाज में एक बड़े परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस विधेयक का समर्थन किया, जबकि कंजर्वेटिव नेता केमी बेडनोच ने इसके खिलाफ मतदान किया। अब ये विधेयक विचार के लिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाएगा। इस विधेयक से इंग्लैंड और वेल्स में मानसिक रूप से अक्षम, गंभीर रूप से बीमार वयस्कों को चिकित्सा सहायता से अपना जीवन समाप्त करने का विकल्प चुनने का अधिकार मिल जाएगा। सहायता प्राप्त मृत्यु इच्छा मृत्यु से अलग है, जहां मानसिक रूप से अक्षम और गंभीर रूप से बीमार रोगी के अनुरोध पर स्वास्थ्य कर्मी उसे घातक इंजेक्शन लगाता है। मिजोरम में असम राइफल्स और अन्य एजेंसियों ने 11,53,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। इस संबंध में 2 महिलाओं सहित 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ब्राजील में कल रात दक्षिणी राज्य सांता कैटरीना के प्राया ग्रांडे में गर्म हवा के गुब्बारे में हुए विस्फोट में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति महीना कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बढ़ी हुई पेंशन अगले महीने से मिलेगी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, दिल्ली, केरल और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को गुजरात तट, पूरे कोंकण तट, सोमालिया तट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों, ओमान और आसपास के यमन तट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों, मध्य और आसपास के उत्तर, दक्षिण अरब सागर, उत्तर पूर्व अरब सागर के कई हिस्सों में न जाने की सलाह दी है। मछुआरों को ये भी सलाह दी गई है कि वे उत्तरी आंध्र प्रदेश तट, मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों और अंडमान सागर के कई हिस्सों में न जाएं। तमिलनाडु तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में गर्म और आर्द्र स्थितियां बने रहने की संभावना है। भारत की माया राजेश्वरन ने जर्मनी में ITF J200 ग्लैडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। 16 वर्षीय मायरा ने फाइनल में स्विट्जरलैंड की नोलिया मांता को 6-2, 6-4 से हराया। यूरोप में माया का यह पहला ITF जूनियर खिताब है। माया का कुल ये 7वां ITF जूनियर खिताब है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से ओलंपिक दिवस दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा भी मौजूद थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार पल।
धन्यवाद लवलीन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल भारत समेत दुनिया भर में आयोजित योग अभ्यास के विशेष सत्रों से संबंधित खबरें सभी अखबारों में सचित्र हैं। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों को पहली खबर बनाया है कि दुनिया में संघर्ष के बीच योग से शांति। हिंदुस्तान के अनुसार योग का विश्व कीर्तिमान, 3,00,000 लोगों ने एक जगह किया योग, छात्रों का 108 बार सूर्य नमस्कार। राजस्थान पत्रिका ने इस शोध को प्रमुखता से दिया है कि अपने किशोर बच्चों के साथ करें योग और कसरत, बेहतर होंगे रिश्ते। राष्ट्रीय सहारा ने ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत अब तक 1,000 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकालने को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, युद्धग्रस्त देश से अपने सभी नागरिकों को निकाल रहा भारत। दैनिक जागरण की पहली खबर है, अहमदाबाद विमान हादसे में हुई कार्रवाई, 3 अफसर हटाए गए। पत्र के अनुसार DGCA के सख्त आदेश पर एयर इंडिया ने किया अमल। दैनिक भास्कर की खास खबर है, कटरा श्रीनगर वंदे भारत से पर्यटन व्यापार को मिली रफ्तार। पत्र के अनुसार कश्मीर में वंदे भारत जुलाई तक फुल उड़ाने और हवाई किराया 50% तक घटा सकती है। दैनिक भास्कर ने ऊर्जा विभाग के इस अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि चार्जर ऑन रहने से हर साल 22 करोड़ यूनिट बिजली बर्बाद हो रही है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे शानदार सफलता बताया। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत अब तक 1,117 भारतीयों को ईरान से सुरक्षित निकाला गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर का आधारशिला रखेंगे। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित देश के कई हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत की माया राजेश्वरन ने जर्मनी में ITF J200 ग्लैडबैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।